नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवतम का मॉर्निंग सेशन में स्कंद 6 अध्याय 14, 21 और 22 का हम चर्चा करेंगे। 21 में प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है तो मैं पढ़ता हूं और उसका अर्थ पढ़ने के बाद फिर 22 में हम सब लोग मिलके फिर मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ये है 21वां श्लोक। आत्मन प्रियतो नामना परतः स्वत एव वा लक्ष्ये लब्ध कामान् त्वां चिन्तया शबलं मुखम्। हे राजा चित्रकेतु, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। ऐसा लगता है तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। यह स्वतः तुम्हारे अपने कारण अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा हुआ है। तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरा चिंता झलकती है। अंगिरा ऋषि कह रहे हैं चित्रकेत महाराज से। 22वां श्लोक, ये सब मिलके मेरे पीछे दोहरा सकते हैं।
एवं विकल्पितः राजन् विदुषा मुनिना अपि सा प्रक्षय अवनतः अभ्याह प्रजा कामा तथा मुनिम एवं। इस प्रकार विकल्पितः पूछे जाने पर राजन, हे राजा परीक्षित, विदुषा परम विद्वान, मुनिना मुनि दार्शनिक के द्वारा, अपि यद्यपि सहा उस राजा चित्रकेतु ने प्रक्षय अवनतः विनयवश झुककर अभ्याह उत्तर दिया प्रजा कामा पुत्र की इच्छा से तथा तत्पश्चात मुनिम मुनि को। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगिरा को सब कुछ ज्ञात था फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से
नीचे झुक गया और महर्षि से इस प्रकार बोले। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगिरा को सब कुछ ज्ञात था, फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोले। तात्पर्य, शब्दार्थ तात्पर्य और टिप्पणी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, क्योंकि मुख मन का दर्शन है, अतः साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही मन की दशा जान लेते हैं। जब महर्षि अंगिरा ने राजा के पीले मुखमंडल के संबंध में संकेत किया तो राजा चित्रकेतु ने अपनी चिंता का कारण इस प्रकार कह सुनाया। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं श्री दीनकार श्री चैतन्य ईश्वर। तो आज के इस चित्रकेतु का जो कथा हम सुनने वाले हैं, इसमें अंगिरा ऋषि आके चित्रकेतु से पूछते हैं, सब कुछ ठीक है क्या? मगर मैं देख रहा हूं आपका मुखमंडल में चिंता का दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो ये पूछ रहे हैं। फिर चित्रकेतु महाराज बड़ा विनीत होकर इसका जवाब अगले श्लोकों में देते हैं। इसको हम कल परसों ऐसे चर्चा करेंगे। ये दो अध्याय पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। मगर संक्षिप्त में, चित्रकेतु महाराज बहुत बड़ा राजा था। उनका 11वें श्लोक में हमने देखा है, कोटि राणिया सहस्र सहस्र दशा, सहस्र सहस्र, सहस्र मतलब 1000, 10^3, सहस्र 10^3 इंटू 10^3, सहस्र गुणा सहस्र दशा मल्टीप्लाइड बाय 10, 10^3 इंटू 10^3 इंटू 10, 10^7 मतलब 1 करोड़। एक के साथ सात शून्य लगाया जा रहा है। तो 11वें श्लोक में बताया गया चित्रकेतु महाराज का 1 करोड़ पत्नियां रानियां थी, मगर संतान नहीं हुआ। तो इसके कारण चित्रकेतु बहुत दुखी थे, रानियां पूरा दुखी थे। इतना ऐश्वर्य है, बहुत बड़ा प्रतापी राजा है, मगर पुत्र संतान नहीं है। तो बड़ा दुखी होके अभी बैठे हैं। अंगिर मुनि आके पूछते हैं आपका दुख का कारण क्या है, उनको पता है फिर भी आते हैं। एक्चुअली ये भगवान का लीला है, किसी को उद्धार करना है तो वो वैष्णव उनको भेजते हैं, वैष्णव उनसे पूछताछ करके उनको मार्गदर्शन करते हैं। चित्रकेतु महाराज बड़ा दुखी था, फिर रानी भी बहुत बड़े, सब लोग दुखी। अंगिर मुनि आ गए, उनको बताते हैं, फिर अंगिर मुनि एक बहुत बड़ा यज्ञ को संपन्न करते हैं। चेष्टा नामक देवता को प्रसन्न करके उसका यज्ञ फल को सबसे जो गुणशीलवती है, बहुत अच्छी रानी है, रानी को वो कृतद्युति, रानी कृतद्युति इनको यज्ञ फल को देते हैं और रानी गर्भवती होती है। पूरा राज्य में इतना खुशी और आनंद, और 9 महीने के बाद बहुत बढ़िया अच्छा सा संतान हो गए। अब राजा का खुशी का कोई लिमिट नहीं है, इतना आनंदित हो गए, इतना खुश हो गए, और रानी को इतना आदर दिए हैं। दूसरा रानियां बहुत ईर्ष्या में देखते रहते हैं, कैसे हमको भी पुत्र संतान चाहिए, हमें तो संतान नहीं हो रहा है। कुछ दिन बीत गया, ये जो रानियां थे सब मिलके छोटा बच्चा को जहर पिला देते हैं, जहर पिला के उनको मारते हैं। जब मर गया है चित्रकेतु के पूरा रानियां, इतना दुखी हो गए चित्रकेतु महाराज, तो शोक में ऐसे ही डूब गए। मेरा संतान, इतना मुश्किल से हमने अंगिरा ऋषि से यज्ञ हवन करवा के हमको आखिरी में मिला था, और ये बच्चा अब जीवित नहीं है। बड़ा दुखी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया हमारा, और कुछ है ही नहीं, बहुत बहुत इतना इतना दुखी। तो इनको उद्धार करना है, यही उद्देश्य से आते हैं। अब अंगिर ऋषि बोलते हैं कि मेरे मेरे बस की बात नहीं, हे नारद मुनि आप मेरे साथ चलो। नारद मुनि बहुत उन्नत श्रेणी, पूरा विश्व में बहुत सारे लोगों को वैष्णव बनाए, उनको मार्गदर्शन किए, तो नारद मुनि को लेके आते हैं। नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं। तो उपदेश देने के पहले उन्होंने देखते हैं ये तो किसी का बात सुनने वाला नहीं है, अब इनको कैसे क्या बताएं कि ये शरीर जो भी है ये तो आत्मा का एक वस्त्र के समान है, ये वस्त्र निकल गया, आत्मा शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर को ऐसे चले जाता है, तो आत्मा और शरीर के बारे में इनको कैसे बताएं। जब हम BAHE में वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं, TTE टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, TTC 1 TTC 2, उसमें बताते हैं 2 तरीका का हम लर्निंग प्रोसेस उसको शिक्षा दे सकते हैं। एक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अपने आप को अनुभव करें। दूसरा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं और उससे सब लोग सीखेंगे। अब नारद मुनि सोचते हैं कि ये तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ही हमें करें, कुछ प्रयोगात्मक करके दिखाएं। वो जाते हैं पुत्र के पास, हे बालक उठो, मैं कह रहा हूं आ जाओ इस शरीर पर, तुम ये शरीर छोड़ के गए हो, शरीर पर आ जाओ, तुम्हारा माता पिता बड़ा दुखी है, तो सब देख रहे हैं। जैसे ही नारद मुनि ने कहा, बालक उठ जाता है, उठ गया। जो इतने देर तक निर्जीव पड़ा रहा वो एकदम नारद मुनि के वचनों से उठ गया। उठ के फिर बोलने शुरू करते हैं, ये मेरा माता पिता पता नहीं लिस्ट में है कि नहीं, मेरा जन्म लाखों 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 बार हुआ है, मेरा माता पिता लाखों लाखों बार, मैं कभी पशु योनि में था, कभी सांप बना, कभी वृक्ष बना, कभी पेड़ बना, कभी ऐसे करके घूमते रह रहा हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर एक्चुअली तात्कालिक है, टेम्पररी है। ये शरीर को छोड़ के पता नहीं कितने शरीर मैं बदल चुका हूं। ये माता पिता कौन है ये लिस्ट में तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लाखों लाखों बार माता पिता का मैंने देखा हूं। असली माता पिता तो भगवान कृष्ण है, जो सबका माता पिता है, वही असली माता पिता है। और ये आत्मा जब तक भगवान के सन्निधान नहीं पहुंचता है तब तक ये घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। तो ये कह के उनको ज्ञान प्रदान करते हैं अंगिर ऋषि, और नारद मुनि देखते रहते हैं। चित्रकेतु महाराज को सब कुछ समझ में आता है कि ये शरीर एक न एक दिन तो जाने वाला है, शरीर के संबंधित जो भी है एक न एक दिन छोड़ के जाना है, आत्मा ही परमानेंट है। तो ये ज्ञान प्रदान करने के लिए नारद मुनि ये पूरा करते हैं, ये हम अगले आने वाला दिनों में हम देखेंगे। तो इधर महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये चित्रकेतु महाराज का दशा जो है ना, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। जितना भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, इतना बड़ा राज्य दिया है, इतना बड़ा संपत्ति है, इतना सुंदर रानियां हैं, फिर भी वो दुखी है। हम अगर हमारा स्थिति को देखते हैं तो हमारा स्थिति ऐसा ही है। भगवान हमें इतना दिया है, भगवान हमें बहुत अच्छा शरीर दिए हैं, आंखें हाथ पैर सब कुछ ठीक है, मगर भगवान का ओर हम यही देखते हैं, भगवान के ओर देखा, भगवान से यही मांगते हैं और चाहिए, और मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। हम भूल जाते हैं कि एक न एक दिन हम ये शरीर को त्यागना पड़ेगा, और जो भी है बड़े घर गाड़ियां बैंक बैलेंस एक न एक दिन छोड़ के ही जाना पड़ेगा, हमारे साथ नहीं आएगा। ये जो ज्ञान है कि हमारा लक्ष्य धन अर्जन सुख भोगना, इसका कोई मतलब एक्चुअली नहीं होता है। हम जन्म मृत्यु चक्कर में पड़े हैं, हमारा लक्ष्य अलग है। हमारा लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त करना, ये जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आना, हम ये लक्ष्य को भूल जाते हैं। जब द्रोणाचार्य सब कौरवों को बुला के ये शिक्षा देने के लिए दिखाते हैं, देखो उधर एक पक्षी को रखा हूं मैं, लकड़ी से बना हुआ पक्षी, उसके आंख को निशाना लगाओ। एक एक को बुलाते हैं, दुर्योधन बोलते हैं, हाँ दुर्योधन बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। दुर्योधन दिखते हैं, पहाड़ दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहे हो, मेरा पूरा संबंधी, मेरा भाई दिख रहे हैं। एक्चुअली अगर हम देखते हैं, हमारा लक्ष्य है भगवत धाम प्राप्त करने के लिए ही ये शरीर प्राप्त हुआ है, भगवान के सेवा करके जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आने के लिए ही भगवान हमारे लिए बुद्धि प्रदान किए हैं। हम उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं, बहुत सारा अलग 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 लक्ष्यों को हम देखते हैं। जैसे दुर्योधन इधर वो देख रहे हैं, मगर जब अर्जुन ने देखा, आपको क्या दिख रहा है, केवल चिड़िया का आंख, ये है लक्ष्य। अगर हम लक्ष्य को भगवान का सेवा करके जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आना है, इस जगत में हम जन्म मृत्यु चक्कर में कष्ट भोग रहे हैं, जब तक हमारे अंदर ये चिंता नहीं आता हम ऐसा ही घूमते रहेंगे। छोटा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होके पढ़ाई गिड़ाई किया और जॉब करने लगा, नौकरी किया, फिर अपना परिवार, संतान उत्पत्ति और घर गाड़ी, बुढ़ा तो होना ही है, बुढ़ा हो गया, बुढ़ा होके फिर आखिर में मर गया। आत्मा जैसे शरीर को त्याग दिया, इस आत्मा को दूसरा शरीर मिलेगा। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि। तो ये जो चक्कर है ये चल रहा है, शरीर को ले रहा है, फिर शरीर को त्याग रहा है दूसरा शरीर। जैसे आदमी नया वस्त्र को पहनता है, पुराना वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र को जैसे पहन रहा है, वैसा ही एक शरीर को त्याग दिया दूसरा शरीर, दूसरा शरीर को त्याग दिया दूसरा शरीर, ऐसे 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। फिर मनुष्य शरीर मिला, हमारे अच्छे कर्म के अनुसार मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर में फिर खेले कूदे, बड़ा हो गए, बिजनेस किया, पैसे अर्जन किया और फिर परिवार, फिर बुढ़ा हो गया, फिर मर गए, फिर ये चक्कर चल रहा है। हम ये नहीं समझ रहे कि हम दुख भोग रहे हैं हर स्टेज में, जैसे बच्चे से लेके जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार के चार चीजें जो है हमें दुख दे रहा है। हम सोचते हैं हम इधर भोग रहे हैं, जन्म लेने के बाद मृत्यु तो आएगा ही आएगा, और बीच में जरा, बुढ़ापा और व्याधि, तरह तरह का रोग, जितना भी पैसे है, जितना भी धनवान हो, जितना भी बुद्धिमान हो, जितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको ये चार चीजें सताएगा ही सताएगा। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मनुष्य होते हुए हम भगवान के नाम स्मरण करें और इससे बाहर आ जाएं। मगर हमारा लक्ष्य ये सीरियसली हम नहीं ले पाते हैं। इसका कारण हम भोगने का स्थिति में, एक राजा को भगवान ने दर्शन दे दिया, भगवान दर्शन दिए, राजा बहुत खुश हो जाते हैं, हे भगवान आपका दर्शन से मेरे मन में जो भी चिंताएं थी सब कुछ खत्म हो गया, इतना मुझे आनंद मिल रहा है, मेरा प्रजा को भी दर्शन दीजिए कृपया। तो भगवान कहते हैं देखो मेरा दर्शन पाना बहुत कठिन है, फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूं। आज शाम को सूर्यास्तमय होने के पहले जितने लोग मेरा दर्शन करना चाहते हैं यही पर आप लेके आइए। तो राजा बहुत खुश हो गए, जल्दी जल्दी चले गए, सबको बोल रहे हैं आज आपका भाग्य खुल गया है, भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ चलो। सब लोग चलना शुरू कर दिए, हाँ जाना है, चलो जाना है भगवान का दर्शन से। राजा आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे सब लोग आ रहे हैं। बारिश, सडनली जोर से बारिश हो रहा है, इधर देखते हैं अरे पूरा पानी हमारे ऊपर ही गिर रहा है, इस तरफ देखो ये पेड़ के नीचे तो पानी नहीं गिर रहा है। अरे पांच मिनट रुक के जाते हैं, क्या होगा, अभी तो बहुत समय है। राजा बोलते हैं पीछे इधर उधर मत देखना, मेरे पीछे चुपचाप चले आइए। महाराज ये बारिश इतना हो रहा है, पानी इतना गिर रहा है, हम थोड़ा दो मिनट रुक के आते हैं, इस तरफ तो पानी कुछ भी नहीं गिर रहा है। कुछ लोग चले गए, राजा जोर जोर से चिल्लाते हैं छोड़ो अब तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो जो बारिश के ढेर से रह गए, वैसा ही देख रहे हैं बारिश आ रहा है और ज्यादा बारिश हो रहा है, वो वैसा ही रह गए। फिर आने लगे, अब चलने लगे, इधर देखते हैं, आइए आइए, बहुत बढ़िया प्रसाद, बहुत बढ़िया खाना, और आपके मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया डांस, बहुत अच्छे। देखिए, अरे आप इतना दूर से आ रहे हो, अरे थोड़ा देर आप देखिए, बहुत बढ़िया खाना खा लिए, और खाना खा के आप आराम से देखिए, इतना अच्छा सा देखिए। महाराज चिल्लाते हैं, ये साधु लोग भी चिल्लाते हैं, ये कोई ऐसे मोह में मत पड़ना, हमारे पीछे आ जाओ, कोई नहीं जाएगा। मगर अरे क्या खाना बन रहा है, इतना स्वादिष्ट, इतना खुशबू आ रहा है, और इतना अच्छा संगीत म्यूजिक आ रहा है इधर से, अरे एक बार देख के आते हैं, इसमें क्या है, थोड़े दूर नहीं, बहुत दूर है, ये पहाड़ के इलाके में ऐसा ही दिखता है, नजदीक है, बहुत दूर है, मत जाओ। नहीं नहीं महाराज, अब भी आ गए, अब भी थोड़ा सा काके, थोड़ा सा देख के आ गए। कुछ लोग चले गए, फिर भी महाराज के पीछे देख रहे हैं, ऊपर से चांदी का बारिश, चांदी गिर रहा है, चांदी का सिक्के गिर रहा है, ऊपर से चांदी का बारिश हो रहा है। चांदी का बारिश, हाँ ये तो हम कभी नहीं देखा, चांदी का बारिश देख रहे। कुछ लोग गए, कुछ लोग राजा के पीछे, ये साधु लोग बार बार बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसे आकर्षण में मत पड़ो, आ जाओ, टाइम हो रहा है, समय बीत रहा है। नहीं, कुछ लोग गए, कुछ लोग आए, वो लोग देख रहे हैं, अरे चांदी का बारिश क्या हो रहा है, चांदी गिर रहा है। तो जो भी आ रहे हैं, महाराज खुश हो गए हैं, कुछ तो आ रहे हैं, बस अभी थोड़ा दूर ही बाकी है, सब लोग मेरे पीछे पीछे आ जाइए जल्दी जल्दी। तो एक आदमी बोलते हैं, इधर देखो क्या देख रहा है, ऊपर से सोने का, अरे ऊपर से सोना गिर रहा है, देखिए सच्ची में ऊपर से सोना गिर रहा है, पहाड़ सोना ऐसे हो रहा है, सोना गिर रहा है, सोना, सोने के सिक्के, अरे हमने कभी नहीं देखा, सोना गिर रहा है, सोना। एक एक करके मैं इतना सोना लेके जाऊंगा, मैं तो माला माल हो गया, सोना। ये साधु लोग भी देखते हैं, अरे सोना सच्ची में कैसे गिर रहा है, लग रहे पहाड़ के जैसे सोना दिख रहा है, ऊपर से गिर रहा है। महाराज चिल्लाते हैं, ये क्या हो रहा है, आइए भगवान का दर्शन करो, बस अभी थोड़ा सा देख के आते हैं। सब लोग आ गए, सोना को देख रहे हैं, ऊपर से सोना गिर रहा है। महाराज चिल्लाते हैं, समय बीत रहा है, आइए आ जाओ। सब आश्चर्यचकित होके सोने के ऊपर देखते हैं, इतना सोना। आखिरी में बस केवल राजा ही फिर भगवान का दर्शन, भगवान मुस्कुराते हैं, यही है मेरा माया जो है ना, बहुत बहुत स्ट्रांग है। भगवान बताते हैं भगवद गीता में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो माया है ना, माया आप उतना आसान इजी नहीं समझना, ये मम माया मेरा माया है, डायरेक्टली इट इज वर्किंग अंडर मी, मेरे नीचे डायरेक्ट काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे नीचे से ऐसा नहीं, डायरेक्ट मेरे शक्ति से वो काम कर रहा है। और ये माया को लांघना बहुत मुश्किल है, मगर उसमें आपको एक बताता हूं, भगवान बताते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मगर मामेव ये प्रपद्यन्ते, अगर मेरा शरणागत हो जाते हैं, माया मेताम तरन्ति ते, ये माया को बहुत आसानी से आप लांग सकते हैं। ये माया का काम एक ही है, जो भी आए उनको तीन प्रकार के क्लेश दें, नंबर एक आदि भौतिक, नंबर दो आध्यात्मिक, नंबर तीन आदि दैविक। जैसे कि चित्रकेतु महाराज पूरा उन्होंने बहुत दुखी होके ये मोह में आ गया कि मुझे पुत्र संतान चाहिए ही चाहिए, इतना सारा रानियां हैं, मुझे संतान नहीं है, पता नहीं क्या होगा, मेरा राज्य क्या क्या होगा, मेरा रानियों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये कौन सा क्लेश है? आदि आत्मिका, आध्यात्मिक क्लेश, जो मन से शरीर से क्लेश उत्पन्न होता है। हमारा मन ही हमें क्लेश दे रहा है, दुख दे रहा है। अरे मैं 20 साल के पहले बिजनेस कर रहा था, ये टेंडर में ऐसा किया था, ऐसा नहीं ऐसा कर दिया तो मेरा करोड़ रुपए का ये हो जाता था, प्रॉफिट आता था, मैंने ऐसा नहीं किया, पता नहीं मुझे क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, घंटे घंटे सोचते रहते हैं बहुत सारे लोगों को। वो ये तुरंत समझना चाहिए, ये मन ही मुझे दुख दे रहा है, ये माया का प्रभाव से मन हमें दुख देगा, हमारा शरीर हमें दुख देगा, इसको आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। आदि भौतिक क्लेश जो दूसरे जीव से हमें मिलता है, दूसरे जीव, अनेक अनेक जीव, जो भी हमारा बॉस हो, हमारा कस्टमर हो, हमारा जो भी आदमी हो, या मक्खी हो, या जो भी है, दूसरा जीव से जो कष्ट मिलता है, आदि भौतिक, और आदि दैविक जो देवताओं से कष्ट दिया जाता है, जैसे तूफान हो, सुनामी हो, भूकंप हो, ऐसे। तो ये तीन चीजें, तीन क्लेश देना ही माया का काम है। एक क्लेश से एटलीस्ट तुम्हारा हाथ में नहीं है, तुम्हारा कंट्रोलर, तुम्हें कंट्रोल करने वाला और कोई है, जागो, उठो। माया ये बार बार याद दिलवाने का प्रयास करते हैं, हम नहीं सुनते। इधर ये श्लोक में अत्यंत विनीत होके चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं। ये विनीत होने का और बड़ा ह्यूमिलिटी, ये विनय से हम काम करने का विधि को चैतन्य महाप्रभु हमें बताए हैं। चैतन्य महाप्रभु कर दिखाए हैं कैसे विनीत होके हम काम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु वाराणसी काशी में कुछ काल तक रहे और सनातन गोस्वामी को उपदेश दिए, तब उनके पास, उनके चरणों में विनती करते हैं चंद्रशेखर और तपन मिश्रा, सारी मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना सहन कैसे कर सकते हैं, और आप कुछ करो। जब तपन मिश्रा और चंद्रशेखर इस तरह चैतन्य महाप्रभु से बात कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हैं और मौन रहते हैं, चुप रहते हैं। उसी समय एक ब्राह्मण उधर आते हैं, ब्राह्मण आते हैं और वह ब्राह्मण तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर के प्रार्थना करते हैं इस प्रकार, हे प्रभु, मैं बनारस के सारा सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया हूं, यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप अन्य सन्यासियों से कभी मिलते जुलते नहीं, किंतु आप कृपया मुझ पर दयालु होकर मेरा निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए ब्राह्मण का निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शन करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो जैसे ब्राह्मण का निमंत्रण को ले लिए हैं, फिर चले जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। जो ही चैतन्य महाप्रभु ने सारा सन्यासियों को देखा, जो मायावादी सन्यासी है वो चैतन्य महाप्रभु को निंदा कर रहे हैं, फिर भी देखिए कैसे विनम्र होके उन्होंने प्रणाम करते हैं। सब नमस्कार करी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालने करी वसीला से स्थाने, जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारा सन्यासियों को देखा, जो ही उन्होंने सबको नमस्कार किया और तब वे अपने पांव धोने चले गए। पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए जिधर पांव धोए हैं, जिधर एक्चुअली पादरक्षा चप्पल छोड़ रहे हैं, उधर ही बैठ गए। वसीया करीला कीचु ऐश्वर्या प्रकाशा महातेजो माया वापु कोटि सूर्या भाषा। भूमि पर बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजोमय प्रकाश को देखा तो उनके चित्त आकर्षित हुआ और वे सभी तुरंत अपने अपने आसन छोड़कर सम्मान से खड़े हो गए। फिर उनका जो लीडर होता है, उनका जो मुखिया है, उनके पास आते हैं, जो प्रकाशानंद सरस्वती था। हे श्रीपाद, कृपया यहां आइए, कृपया यहां यहां से आप अप यहां बता रहे हैं, हे श्रीपाद कृपया यहां आइए, कृपया यहां आइए, आप इस उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं, आपके शोक का कारण क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूं, अतएव मैं लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं है। आप लोग तो बहुत बड़े बड़े सन्यासी हैं और आपके साथ तो मैं कैसे बैठ सकता हूं। किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उनको मध्य लेके आते हैं और वो कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो प्रकाशानंद सरस्वती पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु जैसे उत्तर दिए हैं ये थोड़ा सा हम देखते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती पूछते हैं, मेरी समझ में आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आप तो श्री केशव भारती का शिष्य है और इसलिए आप धनी हैं, आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं, तो फिर आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते हैं, आप हमसे मिलने से क्यों कतराते हैं, आप तो सन्यासी हैं, तो फिर भावुकों के साथ अपने कीर्तन संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने में क्यों लगे रहे हैं। ध्यान तथा वेदांत अध्ययन यही सन्यासी के एकमात्र कर्तव्य है, आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों कर देते हैं, आप स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं, और आपने निम्न वर्ग के लोगों के जैसे आचरण क्यों अपना रखा है। चैतन्य महाप्रभु इसका हरेक का उत्तर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे उन्होंने गुरु ने उनको बताया था, जैसे वो हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन करना जब करने लगे तो उनके पूरा रोमांचित हो गया। उनके गुरु के पास जाके बोलते हैं, आपने क्या नाम दिए हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र से मेरा मन में ऐसे हो रहा है, मैं कभी रोता हूं, कभी नाचता हूं, कभी जोर जोर से चिल्लाता हूं, ये क्या है। उनके गुरु महाराज बहुत संतुष्ट होके बोलते हैं, यही है, आपको कृष्ण प्रेम का प्राप्ति हो गई है, आप पूरा विश्व में कृष्ण प्रेम का प्राप्ति के लिए आप जो भी उद्धार आप कर सकते हैं सबको उद्धार करना है। तो भगवान के नाम का क्या विशिष्टता है, पूरा चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं और मायावादी सन्यासियों के हर एक सूत्र को उन्होंने सबके सामने खंडन करते हैं और बताते हैं कृष्ण प्रेम क्या होता है। सब सन्यासियों ने उनको बहुत आदर करके उनको प्रणाम करते हैं। ये है, देखिए, वो लोग जो मायावादी सन्यासी लोग उनको निंदा कर रहे थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु बहुत विनयपूर्वक ये पूरा सिचुएशन को हैंडल करते हैं और सबको मार्गदर्शन करते हैं। ये चैतन्य चरितामृतम में आदि लीला और अध्याय सात का आप थोड़ा सा देखना चाहिए, प्रकाशानंद सरस्वती का जो उनके साथ वार्तालाप का। तो एक्चुअली हमारा मन में अनेक 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 आलोचनाएं, अनेक 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 चिंताएं और विषय वस्तुओं को भोगने का इच्छा, हमारे इंद्रिय एक एक करके पूरा हमारे दिमाग के अंदर भरते हैं। तो इस मन को हम कंट्रोल करने का एक ही विधि है, भगवान के नामों को बार बार जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करें। नहीं तो हम ऐसे पैसे के पीछे, धन के पीछे मोहित होके, अभी मेरा लक्ष्य को मैं प्राप्त करूंगा, अभी हो गया, अभी थोड़ा दूर, ये थोड़ा दूरी कभी कंप्लीट नहीं होगा। वो दिन आएगा नहीं जब वो दूर खत्म हो जाएगा, मरने के बाद भी विभूत बन के ऐसा ही पैसे के पीछे दौड़ते रहेगा। इसको हैमस्टर व्हील कहते हैं। ये हैमस्टर व्हील यही है, अभी हो गया, कभी ये रुकने वाला नहीं है। जितना देर चलते रहेगा उतना देर और चलना पड़ेगा, और चले और प्राप्त करना है, बस हो गया और थोड़ा सा, और एक 5 लाख, और एक 10 लाख। ये पैसे एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएगा, ये हमारे दिमाग के अंदर नहीं आता। ये जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, ये है हमारे दिमाग के अंदर कूड़ा। इतना कूड़ा हम जन्म जन्मों से जो इकट्ठा किया है, इससे बाहर आने में बड़ा टाइम लगेगा। मगर ये कूड़ा को साफ करने का विधि ऐसा नहीं कि एक साबुन लिया उसको धोया या एक ट्रक लेके आया उसको क्लियर किया, नहीं। हमारे दिमाग के अंदर एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, लाखों लाखों जन्मों से हमारे दिमाग के अंदर ये इकट्ठा हुआ, इसको निकालने का एक ही मार्ग है, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र को लेना शुरू करते हैं, एक एक करके ये जो कूड़ा है हमारे दिमाग के अंदर, कूड़ा निकल जाएगी और हमारा दिमाग साफ होगा, हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं हमारे मन में ही। हमारे पास एक ही विकल्प है, जैसे बंद, हम तो नाचना ही है, इस दुनिया में आ गए हैं, हम चाहिए बंदर के जैसे नाच सकते हैं, जो ये बंदर वाला जैसे ही वो डमरू बजाता है नाचना पड़ेगा, जितना अच्छा नाचे पैसे के लिए वो मारेगा, और नाचो, और पैसे चाहिए। अगर नहीं नाचा तो नहीं नाच रहा है मारेगा, नाचेगा मार पड़ रहा है, जोर नाचना है, अगर नहीं नाच रहे मार पड़ रहा है। मगर ये जो पपेट है, कठपुतली है, जैसे भगवान नचा रहे हैं हम नाच रहे हैं। अच्छा नाचा तो मैं तो नहीं, वो तो नचाने वाला वो है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है, तो इसका कोई नाम नहीं भगवान का। तो अगर हम ऐसा लेते हैं, हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं, भगवान जैसे चलाए, जैसे ही वो कठपुतली वाला नचाते हैं हम नाचें, और हमारे पास और कोई विकल्प नहीं, मैं मेरा कुछ नहीं, जैसे तुम चलाओ मैं वैसे चल रहा हूं। ये भावना हमारे अंदर जब आ गया, हमारे अंदर खुशी और शांति ढूंढ ढूंढ के घुस घुस के हमारे अंदर आ जाएगा। तो इसलिए अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक करते हैं, यही भावना से कि मैं हे भगवान आपका शरणागत हूं, आप जैसे हमें नचाए मैं नाचने के लिए तैयार हूं, जब हमारा जप में पूरा का पूरा ये शक्ति आता है और हमारा मन भगवान के ऊपर लग जाएगा, और हम जन्म मृत्यु चक्कर से जरूर जरूर बाहर निकल के भगवत धाम पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न रहा तो हम चर्चा करेंगे एक मिनट। किसी का कोई प्रश्न है? अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम महापुराण की।